संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है और क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में ये कहा जाता है कि उसमें पुरुषार्थ का लोप होता है, एक तो ये प्रश्न। दूसरा ये कि उसमें अकेले काल का ही महत्व दिया गया है, जिस समय जो होना होगा, जिस समय होना होगा उसी समय होगा। तो सबको ये चिंता है कि जिस समय हमारा मोक्ष होना होगा उसी वक्त होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है, तो फिर हम दर्श में पुरुषार्थ क्यों करें। पुरुषार्थ के इनडायरेक्ट में आ गया प्रश्न कि हमारे हाथ में नहीं रहा, क्योंकि समय पर काम हो तो ऑटोमेटिकली होगा, उसमें हमारा करने का कुछ रहा नहीं।
तो उसे इस बात में एक तो काल का एक अंत लगता है और दूसरा पुरुषार्थ का लोप लगता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के पहले हम समझेंगे क्रमबद्ध पर्याय किस चीज का नाम है। तो क्रमबद्ध पर्याय अकेले काल के निश्चित होने का नाम नहीं है कि जिस समय होना होगा उसी समय होगा, उसके पहले नहीं हो सकता, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। बल्कि इसमें काल, क्षेत्र, भाव सभी बंधे हुए हैं कि जिस द्रव्य का तो ये द्रव्य बना है, जिस क्षेत्र में प्रदेश बंधे हैं, जिस काल में ये काल बना है, और जो होना होगा ये होनहार शामिल है, और जिस निमित्त से तो निमित्त शामिल है, और जिस विधि से इसमें पुरुषार्थ शामिल है। अकेले काल का एकांत जो नियतवाद है, नियतवाद का आरोप लगाया जाते हैं ना, तो नियतवाद या तो काल के एकांत को बोलते हैं और या होनहार के एकांत को बोलते हैं, या तो काल लब्धि के एकांत को नियतवाद बोलते हैं या होनहार के एकांत को नियतवाद बोलते हैं। लेकिन नियति का, नियति और काल लब्धि ये दो एक एक पॉइंट हैं, लेकिन इन दो का नाम क्रमबद्ध नहीं है, लेकिन पांच चीजों का नाम क्रमबद्ध है। थोड़ा गहरा विषय होगा तो धैर्य से सुनना, और आज ही और नहीं तो कल तक वो बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। कौन पांच चीजें कौन कौन सी हैं, वो स्वभाव, काल लब्धि, निमित्त, होनहार, विधि में पुरुषार्थ और होनहार, ये पांच चीजों के मिक्सर का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। और जिसको हम कह समझे पांच चीजों के मिक्सर का नाम माने क्या, कि जिस वस्तु में जिस रूप पर्याय होने का स्वभाव है, उस रूप पर्याय उसी वस्तु में होगी, अन्य वस्तु में नहीं। जैसे रेती में घड़ा बनने का स्वभाव नहीं है तो रेती में से घड़ा नहीं बनेगा, चिकनी मिट्टी में घड़ा बनने का स्वभाव है तो उसमें से घड़ा बने। माने वस्तु स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती है। भव्य जीव को मोक्ष जाने का स्वभाव है तो भव्य जीव को मोक्ष होगा, अभव्य का मोक्ष जाने का स्वभाव नहीं है तो अभव्य को मोक्ष नहीं होगा। इस स्वभाव नाम के फैक्टर का मतलब ये है, वो कब होगा, कैसे होगा, ये बातें बात की है, लेकिन पहले तो उस वस्तु में उस रूप होने का स्वभाव है कि नहीं। पहले फंडामेंटल तो स्वीकृत हो कि आपको ये काम करना स्वभाव है, स्वीकार है कि नहीं। फिर यदि फंडामेंटल न हो तो फिर कब करेंगे, कौन सी तारीख तय करो, फिर जगह तय करो। पहले तुम नक्की तो करो कि लड़का लड़की को स्वीकार है ये संबंध, क्यों अभी स्वीकार तो हुआ नहीं, देखा देखी हुई नहीं, बात हुई नहीं, क्यों साहब फिर तारीख कौन सी ठीक रहेगी। तो आप जयपुर से करेंगे, बंबई से करेंगे, और इनमें व्यायाम करने से क्या फायदा है, क्यों कितना दहेज लेंगे, कितना लेंगे, कैसी करेंगे, इन बातों से फायदा क्या है। पहले दोनों का संबंध होने के लिए दोनों और दोनों के घर वाले राजी हैं कि नहीं, पहले ये बात करो ना, तो आगे कोई बात चलती है ना। तो उस वस्तु में वैसा होने का स्वभाव है कि नहीं, बोलो। हमारे सब अरहंतों ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया तो मोक्ष जाने के लिए किनको उपदेश दिया? अभव्यों को कि भव्यों को? अभव्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ये बात भगवान की दिव्य ध्वनि में आई होगी ना? क्यों राजेंद्र जी, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया ना, अभव्य को मोक्ष कैसे मिलेगा? बोलो। सारा वर्णन भव्य के लिए ही है ना, चाहे तो अन्याय है, अभव्य ने उनके बाप का क्या बिगाड़ा था? हम बिगाड़ा था नहीं बिगाड़ा तो क्या, हमारे बाप का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके स्वभाव में खुद ही बिगड़ा हुआ है, उसको हम क्या करें? भव्य को है, इसका नाम स्वभाव का मतलब यह है कि जिसको मोक्ष होना, इसमें किसी को ऐतराज है? एक एक बात पर अपन नक्की करते जाते हैं, क्रमबद्ध पर जाएगी, एक एक बात पर नक्की करते जाते हैं तो नक्की हो जाएगी। तो जिस वस्तु में जिस रूप होने का स्वभाव है, तो पुद्गल में केवल ज्ञान होने का स्वभाव नहीं है, तो कौन सी विधि लगाए तो पुद्गल को केवल ज्ञान हो जाएगा? धर्म द्रव्य में अवकाश देने का स्वभाव नहीं है, तो कौन सी विधि लगाए तो धर्म द्रव्य अवकाश देने लगेगा? क्यों? अधर्म द्रव्य में चलाने में निमित्त होने का स्वभाव नहीं है, तो क्या कोशिश करे तो वो चलने में निमित्त होने लग जाएगा? समझ रहे ना, माने स्वभाव का मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। समंत भर ने लिखा स्वभाव अतर्क गोचरा। अग्नि गर्म है, क्यों है स्वभाव गर्म? क्यों है? अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, स्वभाव में कोई क्यों नहीं लगता? स्वभाव को तो जाना जाता है, क्यों? स्वभाव विभाव में तो तर्क लगता है कि आप गुस्सा क्यों होते हैं, क्यों? विभाव है ना आत्मा का, तो उसका हमें कोई कारण बताना पड़ेगा कि कर्म का उदय है कि उसने गाली दी है, आज इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? बोलते कि नहीं बोलते तो कारण बताना पड़ेगा कि आप जान क्यों रहे हैं? तो ऐसा कोई पूछता है कि जानना तो आत्मा का स्वभाव है, इसमें क्या प्रश्न खड़ा होता है? क्यों? स्वभाव के अनुरूप तो वस्तु परिणमित होती ही है, तो पहला फैक्टर है स्वभाव, जिसमें वस्तु में जिस रूप होने का स्वभाव नहीं है वो कभी नहीं होगा, और जिस रूप होने का स्वभाव है वो होगा। जो अंतर देखो कोमल जी, फिर सुनना, फिर एक दफे ध्यान देना सब लोग, मैं फर्क डालूंगा, तो अंतर देखना। जिस वस्तु का जिस रूप होने का स्वभाव नहीं है वह वस्तु उस रूप कभी नहीं होगी। अब दूसरा वाक्य सुनना, लेकिन जिस वस्तु का जिस रूप होने का स्वभाव है वह वस्तु उस रूप अवश्य होगी। क्या अंतर? वो तो कभी कालवाचक बात आ गई ना उसमें, इसमें कालवाचक बात को गौण रखा। अंतर दोनों वाक्यों में बबली समझ में आया कि नहीं? पहले कहा कभी नहीं होगी, मैंने काल का निषेध किया, ना आज होगी ना कल होगी ना परसों होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कभी के बदले में यहां अभी लगना चाहिए था ना, कि जिस वस्तु का जिस रूप होने का स्वभाव है वह वस्तु उस रूप अभी होगी, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्या कहा? वह उस रूप अवश्य होगी, ये कहा, ये अंतर था। यदि मैं नहीं बताऊं तो आप नहीं समझ सकते क्या अंतर है। अब देखिए, यदि हमको कभी लगाना है तो ऐसे लगाएंगे कि जिस वस्तु का जिस रूप होने का स्वभाव है वह वस्तु उस रूप कभी ना कभी अवश्य होगी। क्यों? तो ये पूरी बात तो नहीं हुई कभी ना कभी, कि तुम बताओ ना कब होगी, कि उसका निर्णय तो काल लब्ध ही करेगी, तो स्वभाव नाम का फैक्टर वो निर्णय नहीं करेगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। होने में बात नहीं करते हैं कब होगी, लेकिन नहीं होने में करते हैं कि कभी नहीं होगी, क्योंकि होना ही नहीं है तो कभी नहीं होना है, किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं होना है, तो वो तो निषेध स्वभाव में आ गया, लेकिन कब होगी ये बात स्वभाव नाम के फैक्टर में नहीं आई। उसका काम तो है कि वो उस रूप होगी अथवा हो सकती है, हो सकती में ऐसा लगता है तो हुए भी हो नहीं भी हुए ऐसा नहीं समझना, वो होगी ही, लेकिन कब? स्वकाल में होगी, तो जैसे स्वभाव नित्य है ना, स्वभाव माने द्रव्य स्वभाव, उस द्रव्य का उस पर्याय रूप परिणमित होने का स्वभाव है, इसका नाम हुआ द्रव्य स्वभाव। और जिस समय होगी उसका नाम है पर्याय स्वभाव। तो काल जो है वो पर्याय स्वभाव से बना है, कि उसको बोलते काल लब्धि। वो कोई पर का नहीं है, तो पर द्रव्य का कुछ नहीं है उसमें, अपने ही आत्मा में का स्वकाल, हरे वस्तु का स्वकाल है। तो उसके किस काल में क्या होगा ये नक्की है, मतलब कौन सी पर्याय किस काल में होगी ये नक्की है, वो उसका सुकाल है। तो वो निर्णय काल लब्धि से होगा, जल्दी मत करो कि काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा ना। तो हमारे वादे पे तो कुछ नहीं है ना, क्यों तो नहीं, वो कार्य जिस विधि से होना होगा उसी विधि से होगा। तो ये विधि भी आ गई ना, पुरुषार्थ आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक है तो किसी निमित्त की जरूरत तो नहीं है ना, कि नहीं उसे जिस निमित्त से होना होगा उसी निमित्त से होगा। ये भी नक्की है, निमित्त भी नक्की है, अकेला काल ही नक्की नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में क्या नक्की है, पुरुषार्थ भी नक्की है, स्वभाव भी नक्की है, काल भी नक्की है, और क्या निमित्त भी नक्की है। और क्या होगा, क्या होगा कि जो होना है वो ही होगा। तो माने वो होनहार भी नक्की है। पांच चीजों की नक्की का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। तुम अकेले काल की नक्की को समझ रहे, तो काल की नक्की में तुम्हें पसीना छूट रहा है, जब पांच नक्की होंगे तब क्या होगा। क्रमबद्ध पर्याय विषय लेने का उद्देश्य ही जो अपने समझ लो कि अपने में श्रद्धा रखते हैं, मुमुक्षु भाई है, आत्मार्थी भाई है, जो भी नाम देना हो, अध्यात्म प्रेमी है, तो उनको भी उसका सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है ऐसा मेरे को लगता है। कभी कभी उनसे बातें करता हूं तो इसलिए आता है कि इस तभी विशेष स्पष्टीकरण के साथ व्याख्यान की जरूरत है। वह दूसरों के लिए नहीं है, तो जो बात यहां नहीं आए हैं उनके लिए नहीं कही जा रही है, जो यहां आए हैं उनके लिए कही जा रही है। क्यों विनय बाबू, ये समझना किनके में, मुझे वैसे से कम है, कुछ नहीं जानता हूं मैं, तो जैनियों का जानता हूं, वो सुन लो। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी दूसरे धर्म की बात करूंगा नहीं। आपको मालूम है आज से 25 साल पहले जब मैं बड़े मंदिर में प्रवचन करता था तो बहुत श्वेतांबर भाई वहां सुनने के लिए आते हैं, यहां भी होंगे मैं जानता हूं। तो फिर एक दफे उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे साधु जी महाराज आए हैं तो आप उन्हें पढ़ा देंगे, इनका जरूर पढ़ा देंगे, तो आप पधारना। मैंने कहा मेरी दो प्रतिज्ञाएं हैं, जब मैं उस मार्ग में कदम रखा था दो प्रतिज्ञाएं लेके आया हूं पहले दिन से 30 साल पहले। कि कौन सी है, कि एक तो मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो अपनी जगह पढ़ाऊंगा, पढ़ाने जाऊंगा नहीं, जिसे पढ़ना हो वो मेरे पास आए तो मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। किसी का नहीं, गाड़ी आएगी, गाड़ी मारी कुछ नहीं, वो गाड़ी जो आई वो गाड़ी से वो आ जाए जिनको आना है करना है। और दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं दिगंबर धर्म की जो बात है, जो मैंने सारी जिंदगी में समझी है और पढ़ी है, वो ही पढ़ाऊंगा। मैं कोई नया बोझा माथे पर नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि पहले मैंने पढ़ी ही नहीं उसको, तो पहले उसे पढ़ू और फिर तुम्हें पढ़ाऊं। ये दो काम मेरे हैं। अब बोलो, सत्वासुत पढ़ना है पढ़ाऊंगा, समयसार पढ़ना है पढ़ाऊंगा, सर्वासिद्धि पढ़ना है पढ़ाऊंगा, हर में है ना, कल्पसूत्र पढ़ना है, भाई मेरे बस की बात नहीं है। क्या पंडित जी, वैसे से पढ़ना है तो वैसे से उनके पास जाओ, मैं वैसे से नहीं पढ़ाऊंगा। क्या विनय बाबू को मालूम है, तो बहुत पुराने श्रोता है मेरे। हाँ तो अपनी क्या बात चल रही थी, पांच नक्की हैं, एक नक्की नहीं है। क्या एक भाई हमसे बोले कि तेरा बैठ के बात कर लो ना, समझौता हो जाएगा। मैंने कहा भैया तुम इन बातों में दम नहीं है कि क्या, कि खाई जितनी चौड़ी है ना, बैठ के बात करेंगे तो उससे 10 गुनी चौड़ी हो जाएगी। भगवतमल जी, कि क्यों हो जाएगी बोलो। इसलिए हो जाएगी कि वे क्या कहते हैं, हम पे क्या आरोप लगाते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं लोग, वो क्या आरोप लगाते हैं कि ये दूसरे जीव की रक्षा करने के भाव को क्या धर्म नहीं मानते हैं, क्यों पुण्य मानते हैं। अभी वो ये कहते हैं कि जब हमारी चर्चा होगी तो हम कहेंगे वो बचाने का, मारने के भाव के साथ बचाने का भाव भी राग होने से हिंसा है, और हिंसा क्या है, पुण्य का पाप। तो जब उन्हें ये ख्याल में आएगा कि ये तो मुझे पाप मानते हैं तो खाई चोरी होगी कि पते की, बोलो तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दूसरे की रक्षा करने के भाव से पुण्य बंध नहीं होगा, पाप बंध होगा कि नहीं होगा, तो पुण्य बंध ही। दादा समझ लेना, इसमें भी चक्कर है, लेकिन वो स्वयं राग है, वो हिंसा है ना, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति उसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम है अहिंसा। बोलो वो यह जनागम का सार है, और हिंसा क्या है, तुम समझ लो पुण्य के पाप है। इसीलिए तो एक सार में लिखा पाप कर्म को पाप तो कहता है सब लोग, और पुण्य कर्म भी पाप है कहते ज्ञानी लोग। बोलो करना है चर्चा, करेंगे भैया रंग लेकिन मत बजाय पे चर्चा कर लो, क्या चर्चा कर ले, खाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो हमको अकेला काल का ही एकांत मानते हैं, अकेला काल का नक्की मानने में इतना झगड़ा खड़ा हुआ है। जब ये मालूम पड़ेगा काल भी नक्की है, द्रव्य भी नक्की है, निमित्त भी नक्की है, ऐसा नहीं है कि हमको ये डॉक्टरी पढ़नी है तो चार कोई ना कोई निमित्त मिल ही जाएगा, क्यों समझे ना, कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई नहीं, उस कार्य में जिसको निमित्त होना है वो ही होगा। भगवान महावीर के जीव को सम्मसन की प्राप्ति में आदिनाथ को निमित्त नहीं होना था, और वहां मारीच बैठा था, खूब उपदेश सुना और नहीं हुआ, और मुनिराजों को शेर की पर्याय में निमित्त होना था, समोषण में निमित्त नहीं होना था, और जंगल में निमित्त होना था, तो वो निमित्त भी नक्की है भाई साहब, उसे भी खोजना नहीं है। सच्ची घटना एक उदाहरण के रूप में कहता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक लड़के की लड़की से सगाई की बात हो रही थी, तो लड़का का बाप लड़की के बाप आपस में बात करते थे, तो बोला गया जैसा वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अरे तुम्हारे लड़के जैसे मेरी लड़की को सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे। क्या कहा लड़की के बाप ने, क्या कहा, तो मेरी लड़की को तुम्हारे लड़के जैसे सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे। तो लड़की के बाप ने मालूम क्या जवाब दिया था, कि भैया मेरे लड़के को तो एक लड़की चाहिए, तो मिलेगी तो ठीक और ना मिलेगी तो ठीक, तुम्हें अपनी लड़की के लिए सैकड़ों लड़के चाहिए तो तुम सैकड़ों कर लेना। समझ में आया बेटा, क्या सैकड़ों चाहिए तुम्हें, एक लड़की के लिए सैकड़ों लड़की चाहिए, एक लड़की के एक लिए एक चाहिए, बोले डॉक्टर साहब तुम क्या समझते हो, तुम नहीं समझाओगे तो बहुत से समझाने वाले, हमें समझने हमारे उपादान में ताकत होगी तो कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, कोई नहीं बनता है, जिसका बनने में जो निमित्त है वो ही बनता है। भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर वो होंगे वाला है ना मारीच, तो निमित्त भी बताया कि त्रिशला और सिद्धार्थ ही होंगे, कोई ना कोई हो ही जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है कि माँ बाप की कमी है, क्यों तेरों माँ बाप है, कोई ना कोई माँ बाप हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे अपना बाप ही बाप है, कोई ना कोई बाप नहीं हो सकता भैया, क्यों देवचंद जी बोलो, भूतकाल में जिनके जो पिता हो गए वे भी कह सकते हैं कि तू नहीं थी तो बस कोई ना कोई बाप हो जाएगा हमारे बाप का नाम लिखाने के लिए, नहीं अरे वो तो हो ही गया, और वर्तमान में वो भी हो ही गई तो भविष्य में, तो ये भूत का नक्की है, वर्तमान का नक्की है, तो भविष्य का भी नक्की है, कि हमें मनुष्य पर्याय मिलेगी तो हमारे माँ बाप कौन होंगे, ये भी नक्की है। बोलो इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है, ये तो मामला और सिकंजा जकड़ता जा रहा है मामला। तो पंडित जी तुम तो हमें बांधते ही चले जा रहे हो, अरे बांधते कहते तुम बंधे बनाए हो, हम तो छूटने का उपाय बता रहे हैं, क्यों क्या हो गया, स्वभाव नक्की है, मैंने जिस वस्तु का जो जिस वस्तु में वो कार्य होना है उसी वस्तु में होगा, जिस काल में होना है उसी काल में होगा, काल नक्की है, जिस निमित्त से होना है उसी निमित्त से होगा, निमित्त नक्की है और जिस विधि पूर्वक होना है उसी विधि पूर्वक होगा, कोई दूसरे उसमें एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ के लिए अलग, भरत चक्रवर्ती के अलग, तुम्हारे लिए अलग, हमारे लिए अलग, कुछ नहीं। वो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता तो भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में हो गया और आदिनाथ को हजार वर्ष में हो गया, ऐसा अन्याय नहीं है जैन दर्शन में। भरत चक्रवर्ती को भी अंतर्मुहूर्त में हुआ और आदिनाथ को भी अंतर्मुहूर्त में हुआ, तो बाकी क्या किया तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। जब अंतर्मुहूर्त आत्मा में लीन हुए केवल ज्ञान हो गया, हम तो इतना जानते हैं, और बाकी हजार वर्ष तक खाक छानी समझ लो क्या जाना। कर्मों की खाक छानी घबराते तो हो, कर्म भी तो खाके ही है ना, मिट्टी के बने हैं ना, वो कारमान भगना भी तो पुद्गल की है ना भाई साहब। तो ऐसा अन्याय है, एक को हजार वर्ष लगे, एक को बारह वर्ष में हो गया, एक को अंतर्मुहूर्त में हो गया, एक ही विधि है। तो जो विधि अलग अलग हो समझ लेना वो विधि नहीं है। केवल ज्ञान होने की इनने बारह उपवास किए, इनने पंद्रह किए, तो समझ लो वो विधि नहीं है, क्योंकि अलग अलग हो गई। केवल ज्ञान होने की एक ही विधि है कि सम्मा दर्शन ज्ञान पूर्वक उपयोग का अंतर मुहूर्त तक आत्मा में स्थिर होना, ये विधि है। ये विधि में बताओ, ये अनंत केवल ज्ञानी ले आओ, एक में भी अंतर आया हो तो अंतर जो नहीं आया वो ही विधि है, बाकी विधि नहीं अविधि है। मैंने पुरुषार्थ नहीं अपुरुषार्थ है। मैं आपसे बात पूछता हूं, जो काम भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में किया उसको ऋषभदेव में हजार वर्ष लग गए, तो उनके पुरुषार्थ का प्रतीक है कि पुरुषार्थ की कमी का प्रतीक है? बोलो भैया, तुम्हारे बेटे ने जो काम जो पढ़ाई एक वर्ष में पास की, मेरे बेटे ने पक्की कर करके तीन वर्ष में पास की, चलो तो नौकरी कैसे मिलना चाहिए जिसने एक वर्ष में पास की, जिसने तीन वर्ष में पास की, बोलो। तो ऋषभदेव ने हजार वर्ष में पास की तो ये ना विधि क्या समझ गए क्या, क्या विधि? अभी तुम कह रहे हमारा जो बेकार जो बेकार जो बेकार, अब कितना बेकार गया वो छह महीने के उपवास और छह महीने के लिए भटकना, क्यों अब आहार नहीं मिलना, फिर संस राजा के यहाँ आहार मिलना, वो सब केवल ज्ञान होने का कारण नहीं था, होता तो हो जाता। विधि नक्की है, पर क्या होगा कि जो तेरा होना है वही होगा। ऐसा नहीं कि होना तो था लड़का और हो गई लड़की, ऐसा नहीं है। क्यों क्या मंदिर जी, जो होना था वो ही होगा। तो पांच नक्की का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। कौन कौन से पांच नक्की? रमेश जी, स्वभाव का नक्की होना चाहिए, काल्लभ जी का नक्की होना चाहिए, अरे निमित्त नक्की होना चाहिए, फिर विधि नक्की होना चाहिए, फिर होनहार नक्की होना चाहिए, तब पांच चीजों के मिक्सर का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। अभी इसको जरा सरल उदाहरण से समझाऊं, लोगों की समझ में नहीं आई हुई क्या कह रहे हैं। एक बहू के बाल बच्चा होना था तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, और सब घर वाले दालान में चक्कर काट रहे थे अस्पताल के, सबके माथे पे बल पड़े हुए थे, पसीना आ रहा था कि न मालूम क्या होता, न मालूम क्या होता, न मालूम क्या होता, जच्चा बच्चा सुरक्षित तो होता कि नहीं, फर्स्ट डिलीवरी है। इतने में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, क्यों? तो एकदम सबके चेहरे खिल गए, इतना नक्की हो गया कि बच्चा हो गया और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है, रो रहा है माने सुरक्षित है, दुखी है ये नहीं निकाला उसमें से, क्या निकाला? जिंदा है। और जच्चा बच्चा जिंदा है तो जच्चा जिंदा है, क्यों? सब खुशी की लहर जो रही, अब सबकी निगाह दरवाजे पर टिकी है। अब वहां से नर्स ने दरवाजा खोला तो सब एक साथ पूछते क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये कोई नहीं पूछता है, क्यों? ये कोई नहीं पूछता है हुआ कि नहीं हुआ, क्यों कब हुआ ये कोई नहीं पूछता है, कैसे हुआ ये कोई नहीं पूछता है, सब पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि हरेक को पहले तो ये चिंता थी कि सकुशल डिलीवरी हो जाए, तो क्या हुआ का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन वो ये काम निपटा तो दूसरा दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि क्या हुआ, एक साथ बोले सबके सब क्या हुआ। तो नरस ने जवाब दिया, बारात आएगी। नहीं आया समझ में, जिनकी समझ में आया होगा वे हंस गए, जिनकी में नहीं आया वे चुप है। बारात आएगी माने लड़की हुई है। क्यों? अब उसमें किसका चेहरा लटका, किसकी प्रसन्नता कायम रही, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इस सबके दिमाग में नक्की हो गया, ये जरा विचार करो कि वो नर्स जो है जिससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको तो जो 200-500 रुपए मिलना है वो मिलने ही है। क्यों रूदमल जी? लेकिन उसके दिमाग में भी वो 25 साल बाद जो बारात आने की घटना होगी वो ख्याल में आई और उसने उस भाषा में बात करी। उसका दिमाग कहां गया? उसने उसी वक्त एक कल्पना कर ली कि बारात आएगी। क्यों? और एक दिन ये लड़की भी मां बनेगी और फिर भी वो अस्पताल में आएगी तो मैं उसका भी जापा कराऊंगी। ग्राहक बड़ा उसका तो। बहुत सी ऐसी नर्सें हैं जो कहती हैं, बेटा मैंने तेरे बाप का भी जापा कराया था, क्या क्या तो तेरा भी कराया, 3 पीढ़ियों के कराए हैं मैंने जाते, तू समझता क्या है? क्यों कहने का अर्थ ये है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसका स्वभाव क्या है, मां बनने का के पिता बनने का, वो उसका जो तत्काल पैदा हुआ है वो बच्चा उसका स्वभाव क्या है, मां बनने का है कि नक्की हुआ कि नहीं हुआ। ये अभी वो बच्ची 1 घंटे की नहीं हुई लेकिन ये सबको ख्याल में आ गया ना कि यदि ये कभी बनेगी तो मां बनेगी, बाप नहीं बनेगी। इसका नाम है स्वभाव। क्यों? मां बनने का स्वभाव किसी ना किसी महिला में ही होता है, पुरुष में नहीं। पिता बनने का स्वभाव पुरुष में ही होता है, महिला में नहीं। तो स्वभाव के विरुद्ध तो कोई काम होने वाला है नहीं, तो स्वभाव के अनुसार काम होता है कि हां होगा। तो कोई कहे कि स्वभाव है हमारा सम्मा दर्शन होने का, मोक्ष में जाने का भव्य है ना, तो फिर मोक्ष में गए क्यों नहीं अभी तक, और नहीं गए तो काय का स्वभाव, हम नहीं मानते थे स्वभाव मुकाम। कि स्वभाव का अर्थ ये नहीं होता है कि गए क्यों नहीं, कि वो बच्ची मां बनेगी ना, कि हां मां बनेगी तो बननी क्यों नहीं, गए हो गया अभी 1 घंटे की और मां बन जाए, शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसा प्रश्न करने वाला मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यदि हमारा केवल ज्ञान होने का स्वभाव है तो हुआ क्यों नहीं, ये ऐसा ही प्रश्न नहीं है क्या? कौन जी? क्योंकि वो कारणांतर अपेक्षित है, तो दूसरे कारण की अपेक्षा रखता है, अकेले इस एक कारण से काम नहीं होएगा। तो कब का जवाब स्वभाव नहीं है, क्या बनेगी का जवाब है स्वभाव, क्या बनेगी का मां बनेगी, ये स्वभाव क्या का जवाब है, कब का जवाब नहीं है। तो भाई साहब आप बता दो मैं कब बनेगी, फिर मां बनने का स्वभाव है तो कब बनेगी, फिर जब समय आएगा तब बनेगी। क्यों? समय के पहले और भाग्य से अधिक न आज तक किसी को कुछ मिला है न कभी, समय पे बनेगी माने काल लब्धि आएगी, जिस समय उसे मां बनना है उसी समय मां बनेगी।
ठीक है भैया, 20-25 वर्ष का इंतजार करते हैं, अब लड़की 20 वर्ष की हो गई
2 ही मिनट में।
अरे हाँ हो गई,
जब 20 वर्ष की हो गई तो आ गए पंडित जी, वो लड़की मां बनी नहीं, आपने कहा था 20 वर्ष की होगी तो बनेगी, नहीं बनी, आपकी बात झूठी हो गई।
मैं तो कहा था लड़कियां 20 वर्ष की उम्र के बाद बनती हैं, इसलिए कहा था, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं कि मैं फिक्स डेट बता दूं तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा उसकी शादी हो गई, कहीं शादी तो नहीं हुई। अरे भाई तो निमित्त नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगी, जिस निमित्त पूर्वक बनती है वो जब निमित्त बनेगा तभी तो बनेगी, काल लब्धि से कैसे हो जाएगा काम, काल लब्धि से तो काल ही नक्की होगा, निमित्त का काम तो निमित्त ही करेगा ना। कैसा शादी हो जाएगी तो हो जाएगा बच्चा, अगर क्यों नहीं हो जाएगा, सबसे पूछ लो तुम, अगले पंडित हमदेव से पूछने की क्या जरूरत है,
क्यों तो जाएगा ना पंडित जी, शादी हो गई और चार साल तक बच्चा नहीं हुआ तो फिर पंडित जी के पास आ गए पंडित जी तो स्वभाव भी था, काल भी आ गई और निमित्त भी मिल गया, वो अब भी मां नहीं बनी। मैं क्या बताऊं, मां बनने की जो विधि है, प्रक्रिया है, जब तक वो संपन्न नहीं होगी तब तक मां नहीं बनेगी। अमेरिका से लड़का आया था, दो दिन में जाना था, फटाफट शादी करके चला गया। अब ना इसे वीजा मिलता है और उसका ग्रीन कार्ड का चक्कर है, वो न यहां आ सकता है न जो वहां आ सकती है। क्यों तो मां बन जाएगी? अरे मां बन जाएगी तो वो फिर लगा के वह नहीं जाएगा। शादी तो हो गई ना, आपने कहा था ना शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, लेकिन उसको मां बनने की एक प्रक्रिया है, जब तक वो पूरी तरह से संपन्न नहीं होगी तब तक वो मां नहीं बनेगी, नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। ये इसका नाम है विधि, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं ना। अब साहब विधि भी संपन्न हो गई, अब भी नहीं बनी वो, मैं क्या करूं? तो भैया मैं क्रमबद्ध पर्याय का अपना डिपार्टमेंट छोड़ देता हूं, तू मेरे इतने पीछे पड़ा है, मुझे तेरे को क्रमबद्ध पर्याय क्या समझाई माथा मत खाओ, बनना होगी तो बनेगी और नहीं बनना होगी तो नहीं बनेगी। उसके होनहार में बनना नहीं लिखा होगा तो मैं क्या करूंगा? और किसकी मां बनेगी, लड़का की कि लड़की की? बोलो भैया किसकी बनेगी? कि जिसकी बनना होगी उस बनेगी, जिसकी बनना होगी माने ये सब नक्की है, होनहार। जिसकी मां बनना है ये भी नक्की है, वो मुझे पता नहीं है कि लड़का की बनेगी कि लड़की की बनेगी, केवल को पता। ये पक्की बात जानना हो तो केवल ज्ञानी के पास जा। मैं इतनी जानता हूं कि जो जिसकी बनना है उसकी ही बनेगी, अन्य की नहीं। मैं इतना जानता हूं जिस द्रव्य में जो पर्याय होनी है उस द्रव्य में ही वो पर्याय होगी, अन्य द्रव्य में नहीं। जिस काल में जो पर्याय होनी है वह पर्याय उसी काल में होगी, अन्य काल में नहीं। जिस निमित्त से जो पर्याय होनी है वह पर्याय उसी निमित्त से होगी, अन्य निमित्त से नहीं। जिस विधि से जो पर्याय होनी है वो उस विधि से ही होगी, अन्य विधि से नहीं। और जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वो ही होगी, अन्य नहीं। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। सोचना भाई गंभीरता से, क्रमबद्ध पर्याय का पहले सही स्वरूप समझ में आ जाए, समझ लो तो फिर रिजेक्ट करना हो तो कर देना, लेकिन बिना समझे रिजेक्ट मत कर देना। क्यों क्या नहीं साहब, तुम्हारा पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग रुक जाएगा। मैं कहा अच्छा, और नहीं मानने से मुक्ति का मार्ग चालू हो जाएगा, पुरुषार्थ चालू हो जाएगा? बोलो भैया, क्रमबद्ध पर्याय मानने से तो बहुत खतरे हो जाएंगे बाबूलाल जी सब, लेकिन नहीं मानने से तो कोई खतरा नहीं है ना, फिर तो मोक्ष हो जाएगा ना। तो आज तक तुमने नहीं मानी ना, क्या हुआ बताओ ना। नहीं मानने का परिणाम तो तुम्हें मालूम है कि क्या हुआ, चार गति में 84 लाख योनियों में रख रहे, अनादिकाल से आज तक नहीं मानी, उसका परिणाम तो आपने देख लिया। अब ऐसा करो कि एक भव के लिए हमारी बात मान लो, एक भव में देखो मानने से क्या होता है, होता क्या नहीं होता, पुरुषार्थ का लोप होता है कि पुरुषार्थ प्रकट होता है, यही तो होता है ना। क्यों पंडित जी, तो इसे मानने से ए लाभ है और नहीं मानने से ए लाभ है? तो नहीं मानने वाला काम तो अभी हो ही रहा है ना, सारी समाज मान लो उसे नहीं मान रही है, तो सब मोक्ष में चले गए, सबका मोक्ष मार्ग पड़ गया, क्या हुआ? छोटा घर छोड़ के बड़ा घर बनाने के चक्कर में हो गए, एक बाल बच्चा छोड़ के 200-250 बच्चों पालने के चक्कर में हो गए। क्यों, क्या नाम जुगराज जी, क्या हुआ? अरे नहीं मानने का तो इतने उदाहरण मौजूद हैं, तो मान के देख लो कि तुम्हारा, बताओ कोई मानने वाले एक आध उदाहरण हो तो, एक नहीं तुमको तो हम हजारों गिना दे, तो बताओ ना आदिनाथ से लेके महावीर तक क्यों जो अपने केवल ज्ञान को नहीं जानते होंगे, उनके केवल ज्ञान में जो सब आगे पीछे का झलक रहा होगा वो केवल ज्ञान उनकी पहले श्रद्धा में नहीं आया होगा, श्रद्धा में आए बिना जीवन में आता ही नहीं है। चौथे गुणस्थान में केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है और तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। गुणस्थान विवेचन वालों से पूछ लो, पहले केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है कि केवल ज्ञान बोलो। तो आदिनाथ से लेकर महावीर तक जितने भी आज तक मोक्ष गए हैं उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, उन्हें केवल ज्ञान होने के पहले केवल ज्ञान का स्वरूप ख्याल में आया होगा कि नहीं, उसकी श्रद्धा हुई होगी कि नहीं, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि भाई पांच चीजों के मिक्सर का नाम क्रमद पर्याय है और उसमें वो एक चीज पुरुषार्थ भी है, लोप हो जाएगा उसमें है। हाँ ये बात जरूर है। क्या जरूर है? हल बहेरा आंवला और नमक और एक और सोच समझ लो, पांच चीजें मिलाई तो उसका नाम हमने लिखे पंच सकार चूरण, समझ लो सौंप सा पंच सकार चूरण। तो पंच सकार चूरण में हमने मलाई मान लीजिए कि सौंठ मलाई सौंप मलाई, तो सौंठ का सौंप गायब हो जाएगी, सौंप गायब हो जाएगी। तो हम पांच चीजें मिलाई हैं तो पंच सकार में पांचों चीजें हैं क्या नहीं है, तो एक आध गायब हो गई। हाँ गायब हो गया, नाम गायब हो गया, क्योंकि उसका नाम अब सौंठ नहीं रहा, उसका नाम अब सौंप नहीं रहा, उसका नाम अब सनाय नहीं रहा, उसका नाम हो गया पंच सकार। समझ गया ना? तो ऐसे ही वो पुरुषार्थ, वो स्वभाव, वो काललब्धि, वो होनहार, वो निमित्त, इनके ये नाम नहीं रहे, इन सब का एक नाम हो गया क्रमबद्ध पर्याय, नाम गायब हो जाएगा। तो नाम की जिनको इच्छा है वे कहें और चाहे हम ही गायब हो जाएं, लेकिन नाम गायब नहीं होना चाहिए, क्यों? नाम अमर रहना चाहिए। हम तो मर जाएंगे लेकिन नाम जिंदा रहा तो हम ही अमर हो गए, क्यों? हर एक आदमी अपने नाम को अमर रखकर अमर बनने के चक्कर में है कि नहीं है? बड़ी बड़े स्मारक खड़े होते हैं, संस्थाएं खड़ी होती हैं, किताबों में नाम छपते हैं, अखबारों में नाम छपते हैं, क्यों? कि हम तो चले जाएंगे लेकिन नाम रह जाएगा। गजब हो गया, जो आत्मा अमर है उसे तो मूर्ख मरना मानता है, और जो नाम गारंटी से मरने वाला है उसे अमर मानता है। क्या भगवतमल जी, आज भगवतमल जी ने ये किया तो 100 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद कौन जाने कौन से भगवतमल है, हजार भगवतमल होंगे हिंदुस्तान में, तो कौन से भगवतमल ने किया, कहां किया, कैसा किया, बोलो ए? कौन जानेगा क्या होगा? जो नाम गारंटी से मरने वाला है उसे हम अमर समझ रहे, और जो आत्मा अमर है उसे मरने वाला समझ। भाई क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ इंक्लूडिंग है, शामिल है, तो उसके लोप होने का प्रश्न कहां है? वो तो हम कह रहे होगा ही। हम ये कहें कि कर्ण लब्धि के बिना संबंध दर्शन हो जाएगा तो ये कहोगे पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। हम ये कहें कि वहां छपक श्रेणी मारे बिना केवल ज्ञान हो जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय वाले ये कहें तो समझो पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। क्यों? तो जिन जीवों को मोक्ष जब होना है, केवल ज्ञान होना है, तभी होगा, और उसके पहले क्या नाम सबक श्रेणी रूप पुरुषार्थ भी नियम से होगा ही, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। जो हम कहते हैं केवल ज्ञान होगा जब होना होगा, जब होना है तभी होगा, तो हम काय को माथा मारे, क्यों? ठीक है, अपने माथा को बचा के रखो, इसमें नहीं मारोगे जिनवाणी में तो काय में मारोगे, बोलो, धंधे में, पानी में, काय में मारोगे, राजनीति में, कहीं ना कहीं तो माथा मार नहीं है, तो तुम्हारे पास माथा है तो मारे बिना रहोगे नहीं। बोला क्यों सेठी जी, क्या करना है? बोला यहां नहीं होते तो कोई मरीज देख रहे होते, और मरीज देखना हो तो यहां कम मरीज नहीं है, आप बाहर बैठ जाओ पूरा पेशेंट शांति से निकल जाएगा और मरीज ही देखते रहना, कहीं ना कहीं तो माथा मार नहीं है ना, क्यों? मरीजों की कमी थी, क्यों कपूरचंद जी डॉक्टर साहब, इसलिए आपने धंधा बंद किया, क्यों? क्यों उनमें माथा मारते मारते परेशान हो गए थे, तो इस आत्मा में माथा मारने की सोची, बोलो क्या करना है तेरे को, हम क्यों माथा मारे, क्यों माथा मारे? अरे भाई जब वो कार्य होगा तो उसके पहले जो प्रक्रिया होती है वो भी होगी ही, लेकिन वो निमित्त के बिना तो नहीं होगा ना, काल लब्धि होगी जब ही होगा, और स्वभाव में निमित्त बिना है, निमित्त के बिना नहीं होगा। आज हमने एक सुन भैया पंडित देखा जो कहता है निमित्त के बिना नहीं होगा, आज तक तो सामने निमित्त की धुनाई करने वाले ही देखे थे, ये तो निमित्त को मानता ही नहीं है, क्यों? ये तो कह रहा है कि निमित्त के बिना नहीं होगा, तो फिर निमित्त तो खोजना पड़ेगा, कि निमित्त के बिना नहीं होगा, ये नक्की है, लेकिन निमित्त को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजना शब्द जो वो बोलता है उसमें से भी ये ध्वनित होता है कि निमित्त नक्की है, वो खो गया है, खोजना है, नया निमित्त बनाना नहीं है। क्यों? क्या चार्ज इसको निमित्त बनाना है? निमित्त खोजने का मतलब क्या है बोलो? कि हमारे इस कार्य में जो निमित्त है वो ही निमित्त, कि तू चिंता मत करे, वो जब काल लब्धि आएगी तो निमित्त वही हाजिर होगा। निमित्त को खोजने नहीं जाना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान महावीर का जीव 16वें स्वर्ग में था और वो त्रिशला के और गर्भ में आना था, तो उसे उसने बहुत चिंता की होगी कि जरा अम्मा जी को खोज के तो आऊं, जरा कौन है मेरी अम्मा, क्यों? तो उन्हें व्यवस्था करी होगी, जुटाई होगी, तो इतने समर्थ थे, 16वें स्वर्ग के इंद्र थे, सब कुछ कर सकते थे कि ये नहीं मान रहे हैं सिद्धार्थ, बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये आगे मेरे थोड़ा धमका देते, कहे चुपचाप शादी कर लेने, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझता क्या मैं 16वें स्वर्ग का इंद्र, क्यों? तो उनने अपने माता पिता जुटाने में कोई प्रयत्न किया था, क्यों? तो उनके तो नक्की थे, आदिनाथ ने बता रहे थे, तो तुम्हारे तो नक्की नहीं थे, तुमने किया था कोई प्रयत्न? बोलो राजकुमार, क्या नाम? आदिन बाबू, कि हमारी अम्मा ये पसंद करके आए हो, तुमने कोई प्रयत्न किया था? तो मनुष्य गति बांधी होगी जहां, और मनुष्य आयु कर्म बांधा होगा, और वहां से यहां आए तो माँ बाप का सिलेक्शन तो किया होगा ना, इंतजाम तो पक्का किया होगा कि नहीं किया? तो जब हमारी योग्यता पकी, हमारा काल आया, हमें मनुष्य पर्याय होनी थी, तो हम आए अचेत अवस्था में भी, तो यहां माँ बाप हाजिर थे हमारी सेवा के लिए। एक आदमी इसलिए रुक गया कि उसे मनुष्य इसलिए नहीं मिल पाया कि उसे माँ बाप नहीं थे, सबने भ्रमचर्य ले लिया, क्या करें, क्यों? अब आता कैसे, रास्ता बंद हो गया था, क्यों? अरे तेरे को मनुष्य भव यदि मिलना है, तो तेरी माँ जिसको बनना है, तेरा पिता जिसको बनना है, तो उनको ब्रह्मचर्य लेने का भाव नहीं आएगा, घबरा मत, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, यदि वो नहीं हो तो दूसरे के, कि ऐसा नहीं है, निमित्त नक्की है, जो होना है वो ही होगा, समझ में आया ना? इसलिए 10 जगह माथा मारने की जरूरत नहीं है, यहां वहां माथा घुमाने की जरूरत नहीं है। बोलो, माँ बाप बिना प्रयत्न के मिल गए, और जैसे मिल गए हमने चुपचाप स्वीकार कर लिए, ये नहीं कहा कि इस माँ के दांत निकले मैं इसे अपनी माँ नहीं मानूंगी, ये काली कलूटी को मैं अपना माँ नहीं मानूंगा, क्यों? बाल बच्चे जैसे मिल गए चुपचाप स्वीकार कर लिया, हमने ये नहीं कहा कि मैं इस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो काला कलूटा है, इसकी एक आंख गायब है, क्यों? भाई बहन जैसे मिल गए हमने कभी ऐतराज नहीं किया कि मैं इसे भाई नहीं मानूंगा, क्यों? अब अटरने लग गया है, नहीं क्या दो पैसे की हांडी को ठोक बजा कर लेता अरे मुझे क्या समझ में आए ना, जैसे दो नक्की थे और चुपचाप मिल गए बिना उस प्रयत्न के, और चुपचाप तूने स्वीकार कर लिए, ऐसे ही किसका कौन पति होना है, किसकी कौन पत्नी होना है, वो बराबर नक्की है और समय पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हम कोशिश करके जल्दी जल्दी फल्दी कुछ नहीं होगी, काल लब्धि के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसा लगा कलस्तिका में कि केवल ज्ञान में नोंद है, क्या लिखा कलस्तिका में? लिखा कि प्रत्येक द्रव्य की क्या पर्याय होगी, तेरी शादी किससे होगी, ये भगवान के केवल ज्ञान में नोंद है। तो ठीक है किससे होगी वो तो नोंद है, लेकिन टाइम तो नोंद नहीं है, तो मैं कोशिश तो कर लूं जल्दी हो जाए, कि नहीं नहीं वो टाइम भी फिक्स है, तो पता चल जाए तो मैं जगह बुकिंग करा दूं, कि जगह की बुकिंग है, ऑलरेडी बुकिंग है, फिर पंडित तो खोज के रखूं, फिर कौन पाएगा कि वो भी नक्की है, तो मेरा तो सारा पुरुषार्थ लोप, तेरी सारा पुरुषार्थ लोप हो रहा है कि तेरी सारी चिंताएं लोप हो रही है। बोल, इस क्रमबद्ध पर्याय में से तेरे को अद्भुत शांति आ रही है, क्या खुलता आ रही? बोल, तेरे माथे पर करने का भार उतर रहा है कि भार चढ़ रहा है, नक्की कर। एक दफे हृदय की गहराई से नक्की करेगा तो भाई तेरा मत भी क्रमबद्ध पर्याय के पक्ष में ही जाएगा।